वही महात्म्य ही चर्चा करने वाले हैं, महिमा महत्व ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अलग अलग जगह से हम लोग करेंगे। सिर्फ गीता महात्म्य जो प्रभुपाद जी ने अंत में दिया उसको ही नहीं करने वाले हम लोग, अन्य भी चीज चर्चा करने वाले। तो भगवद्गीता हम लोग गीता महात्म्य चर्चा किए, फिर भगवान स्वयं उसको गुणगान करते हैं। कहाँ पर? अभी समय मिलेगा हम लोगों को। भगवान बोलते हैं अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामि किमे मतिहि। तो जो इसको अध्ययन करते हैं, अध्येष्यते च इमं, जो इसको अध्ययन करते हैं धर्म्यं संवादम आयो, सो हम दोनों के बीच में जो धर्म के बारे में संवाद है उसको जो अध्ययन करते हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिहि। तो उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, और वो व्यक्ति अपने बुद्धि से मेरा पूजा करते हैं। तो ये भगवद्गीता का महिमा है, जो इसको अध्ययन करते हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ है, वो ज्ञान यज्ञ, और भगवान को वो बुद्धि से पूजा करने के समान है। कभी कभी आप देखा होगा ना, इधर उधर वो लोग एडवर्टाइज देते, एडवर्टाइज करते हैं गीता ज्ञान यज्ञ ऐसे लिखते हैं। तो लोग आके सुनते हैं और चले जाते हैं और बाद में टेलीविजन देखते हैं, है ना। गीता ज्ञान यज्ञ करने के बाद कुछ नहीं फल मिलता है, लेकिन वास्तव में जो सही में अध्ययन करते हैं एक अधिकृत मार्गदर्शन से, तब उनको वो भगवान को ऐसे ज्ञान यज्ञ से भगवान का आराधना करते हैं। और 1870 अध्येष्यते च इमं धर्म्यां संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिहि। पढ़िए उसको था अनुवाद, 70वां श्लोक, 18वें अध्याय का 70वां श्लोक। वन मोर माइक।
करता हूँ कि जो तुम्हारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है।
और संजय भी गुणगान करते हैं 74 और 76वां श्लोक में। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौसम् अद्भुतम् रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य महात्मनः, सो महात्मनः इन दोनों महान आत्माओं के बीच में जो संवाद हुआ, कौन दोनों महात्मा है? वासुदेव भगवान और पार्थ। संवादम इमम अश्रौसम, सो मैंने वो संवाद को सुना। अद्भुतम रोमहर्षणम, वो कैसे संवाद था? वो बहुत ही अद्भुत था, और उसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, रोमहर्षणम। ऐसे होगा हमारा भी, लेकिन हम लोगों ने चर्चा किया ना, सबको एक ही लाभ नहीं मिलने वाला है। अद्भुतम रोमहर्षणम, लेकिन फिर भी वो रोमांचित करने वाला है, बहुत ही अद्भुत है वो संवाद, ये उसका महिमा है। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे संवाद कभी भूतो न भविष्यति, कभी पहले कभी हुआ नहीं था और होगा भी नहीं, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। वो श्लोक तो उल्लेख नहीं किया उन्होंने, भूतो न भविष्यति, लेकिन उसका ऐसे लिखा है उन्होंने। सो भविष्य में या भूत में ऐसे कभी हुआ नहीं था, लेकिन एक बार हुआ था जब भगवान स्वयं विवस्वान को दिए थे लेकिन फिर भी ये अद्भुत है। क्यों ये अद्भुत है, प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि स्वयं भगवान अपने बारे में और उनके शक्तियों के बारे में वो अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए ये अद्भुत है। तो इसका अर्थ है कि ऐसे हम लोग कहीं देखते हैं शास्त्रों में, पुराणों में और अन्य जगह पर भी लोग भगवान के बारे में बोलते हैं। यहाँ पर इसका विषय भगवद्गीता का विशेषता क्या है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं अपने बारे में, तो वो विशेषता है। तो भगवान को छोड़कर उनको और अच्छी तरह से कौन जान सकते हैं, कोई और नहीं जान सकते है कि नहीं, इसलिए ये विशेष है, बहुत ही अद्भुत है, ये अद्भुत बात है। लेकिन मूर्ख लोग वो लोग निंदा करते हैं कि भगवान देखो अपने बारे में अहंकार से अपने बारे में बोल रहे लगते ऐसे लगते, लेकिन ये मूर्खों को पता नहीं भगवान यहाँ पर अहंकार प्रस्तुत नहीं कर रहे, क्योंकि वो भगवान का अर्जुन का सारथी बने हैं, तो वही दिखता है कि वो भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही अद्भुत बात है कि भगवान स्वयं उनके बारे में और उनके शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। तो अर्जुन के पदचिन्हों में चलते हुए हम लोग इसको समझेंगे, तो भगवान को समझेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमयी और यशस्वी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि संजय उन्होंने क्या किया, उसको समझा उन्होंने और उसका साक्षात्कार किया और वो धृतराष्ट्र को भी दिया उन्होंने। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये महत्व क्या है, संजय ने उसको साक्षात्कार करके धृतराष्ट्र को दे रहे हैं। सो उसको पढ़िए, संजय उवाच, कौन पढ़ेंगे, ललित कृष्ण प्रभु।
संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
इमं अश्रौसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्।
संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है।
और तात्पर्य वहां से पढ़िए जहाँ पर द कन्वर्सेशन वॉज वंडरफुल बिकॉज, क्यों ये अद्भुत था वो वर्णन करते हैं ना, वहां से पढ़िए।
यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी।
अद्भुत होना चाहिए,
पुनः होगी यह वार्ता, आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे जो परम भगवत भक्त था। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा।
वहाँ पर वो पहला वाक्य फिर से पढ़िए उसको, The conversation was wonderful because of such an important।
यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी,
या ना भूतो ना भविष्यति, वो वहाँ पर ठीक है। खत्म हो गए ना. संजय रियलाइज दिस, यू रेड दैट.
संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई. अब ये निष्कर्ष निकला कि
बस 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 आगे भी और संजय उसको गुणगान करते हैं. राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहु मुहु. तो राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, जैसे मैं बार बार इसको स्मरण करता हूँ ये अद्भुत संवाद को. केशवार्जुनयो, पहले वे वासुदेवस्य पार्थस्य कहते हैं, यहाँ पर केशवार्जुनयो कहते हैं, केशव और अर्जुन के बीच में. पुण्यम, वो उसका गुणगान करता है. जैसे हम लोग गीता महात्म्य में गीता सुगी गीता शास्त्र इदम पुण्यम, वहाँ पर भी पुण्यम शब्द आता है, यहाँ पर भी पुण्यम. पुण्य मतलब दिव्य, ट्रांसेंडेंटल. ये तीनों गुणों से परे है, ये इस भौतिक जगत का नहीं है. ये संवाद, ये संवाद एक मित्र मित्र का, मित्र मित्र का ना संवाद नहीं है. जैसे एक ऑर्डिनरी है ना, सामान्य मित्र मित्र के बीच में कुछ संवाद होता है, वहाँ पर कुछ या, और भौतिक जगत में कई सारे संवाद है ना. हर बार जो भी दो लोग मिलते हैं वो संवाद करते रहते हैं, लेकिन वो पुण्य नहीं होता है, वो दिव्य नहीं होता है. सो लोग भौतिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, बकवास बोलते रहते हैं, है ना. सो लेकिन ये भगवद्गीता क्या है, पुण्य है, दिव्य है, पुण्यम. ऋष्यामि च मोह मोह, तो मैं बहुत ही थ्रिल्ड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, रोमांचक हो रहा है बार बार बार. मोह मोह, व्हाट इज दैट, बार बार मुझे रोमांचित हो रहा हूँ उसको सुन के, उसको स्मरण करते करते. तो इसलिए गीता हम लोग याद रखेंगे, उसको बार बार स्मरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही अनुभव हमें होगा. इसलिए उसको कंठस्थ करना चाहिए. क्यों हम लोग आपके पीछे पड़े कंठस्थ करने के लिए, ताकि आपको भी यही अनुभव मिले. ऋषामे छह मुँह मुँह. तो और प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवद्गीता का, भगवद्गीता इतना दिव्य है कि तुरंत ही वो व्यक्ति, कोई भी, ये दोनों कृष्ण केशवार्जुन, कृष्ण और अर्जुन के जो वार्तालाप हुआ, तो वो तुरंत ही वो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है और कभी भी उसको भूल नहीं सकते हैं. एक बार आप भगवद्गीता को अच्छी तरह से समझ लिए तो उसको कभी नहीं भूल सकते हैं. इसलिए ना नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. वो कभी नाश नहीं होता है, भगवद्गीता का जो समझ है. आपने जितना इसको समझ लिया है उसको यथारूप आगे जीवन में लेके जा सकते हैं, यथारूप. इसलिए उसका नाम है यथारूप. तो उसका नाश कभी नहीं होता है. लेकिन मैथमेटिक्स ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेशन सब समझ लिए, फिर भी अगले जीवन में फिर से उसको समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि वो आपको याद रहेगा या स्मरण रहेगा, वो आपके साथ आएगा, ऐसा नहीं होता है ना. हम जो भी विश्वविद्यालय में जो भी हम लोग सीखते हैं सुनते हैं वो खत्म हो जाता है मृत्यु के बाद में. यहाँ पर बार बार संस्मृत्य संस्मृत्य, बार बार मैं उसको स्मरण कर रहा हूँ. तो और दिव्य, ये अद्भुत पुण्यम दिव्य इसलिए भी है कि हर बार इसको हम लोग समझेंगे हमें नया 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 साक्षात्कार मिलेगा. आपको ऐसा लगेगा मैंने इसको पहले पढ़ा ही नहीं है करके, है ना. मैं उस दिन पूछ रहा था ना किसी को कि प्रभुपाद यहाँ पर नौ स्तर भगवद्गीता के अध्याय के, कल हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने उसको पढ़ा नहीं था, लेकिन अभी फिर से जब हम लोग पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ रहा है, अरे मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं था, ऐसा लगता है ना. तो ये दिव्य है. तो उसका अर्थ और प्रभुपाद यहाँ पर कर रहे हैं कि जो सही मार्गदर्शन में भगवद्गीता को समझते या सुनते हैं तो वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होते। क्यों ऐसे लिख रहे प्रभुपाद? क्योंकि यहाँ पर संजय पूर्ण कृष्ण भावना भावित का लक्षण दिखाए है ना, प्रकट कर रहे राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इदम केशवार्जुन ऋषामि च मुहु मुहु, उसको बार बार स्मरण करके करके मुझे बहुत ही रोमांच हो रहा है। द रिजल्ट ऑफ कृष्ण वन बिकम्स इंक्रीजिंगली एनलाइटन्ड, ही एंजॉयज लाइफ विद थ्रिल नॉट ओनली फॉर सम टाइम बट एट एवरी मोमेंट। सो कृष्ण भावना भावित होने का या भगवद्गीता अध्ययन करने का यही फल है कि जीवन बहुत ही रोमांचित हो जाता है और हर समय उसको आनंदमय हो जाता है। तो ये है, और श्रील प्रभुपाद भी पढ़िए उसको राजन संस्मृत्य संस्मृत्य एक बार पढ़ लीजिए उसको। हाँ तात्पर्य भी
भगवत पूजा का इतना जगह है कि जो भी अर्थ तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह गुणात्मक हो जाता है और इस वार्तालाप को भी नहीं आध्यात्मिक जीवन की है से बेहतरी है। दूसरे शब्दों में जब कोई गीता को सही सोच से अर्थात से समझता है तो उसे कृष्ण भावना में प्राप्त होता है। कृष्ण भावना मत का फल यह होता है केवल आध्यात्मिक आध्यात्म अत्यधिक प्रबुद्ध हो सकता है और जीवन का वो आनंद सहित सुस्कार प्रत्येक क्षण करता है।
है ना, महिमा है ना भगवद्गीता का। ठीक है, प्रभुपाद पहले श्लोक के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि कोई सौभाग्य से कोई एक परंपरा में आते हुए एक भक्त के मार्गदर्शन में गीता को समझ लेता है तो सैविक संपूर्ण वैदिक ज्ञान के परे चले जाता है। सो इसका अर्थ क्या है? वैदिक ज्ञान, सिर्फ वैदिक ज्ञान ही नहीं, पूरा जगत में जो भी शास्त्र है उससे भी वो ऊपर चले जाता है उसका ज्ञान। तो इसका अर्थ क्या है? पाश्चात्य देश के शास्त्र क्या है, वो कुरान बाइबल, वो ABCD भी नहीं है, वो ABCD भी नहीं है, वो LKG UKG उससे भी कम है वो। अभी कुछ है क्या LKG लिटिल गार्डन कुछ बोलते हैं ना प्ले स्कूल ऐसे कुछ बोलते हैं ना, किंडर गार्डन या प्ले स्कूल ऐसे कुछ है ना, वैसे है वो कुछ नहीं उसमें एक्चुअली। तो 2000 साल पाश्चात्य देश का 2000 साल के इतिहास देखेंगे तो 2000 साल में कोई कितने भी दार्शनिक हुए उनका ज्ञान देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत ईसा मसीह ने कुछ सिखा दिया बाइबल में, उसको भी वो लोग क्या कर दिया, सब बदल बदल तोड़ मोड़ के कुछ कर दिया वो लोग, हाँ राइट और नॉट? तो वो कहते हैं ईसा मसीह कहते हैं हत्या मत करो, लेकिन ये लोग गायों को हत्या करके बड़ा बड़ा स्लॉटर हाउस बना के गायों का हत्या करके खाता है लोग, हाँ उसको भी सब उसको बदल दिया सब कुछ। तो पुनर्जन्म के बारे में भी था, उसको भी वो लोग बदल दिया, वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो जितना भी था वो भी क्या है, किंडरगार्टन के समान है। कुरान बाइबल जो भी है वो लोगों को आप पूछेंगे तो भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान कौन है, तो आप उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। वो लोग बोलते हैं गॉड 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 करके, लेकिन उनको कुछ पता नहीं कैसे भगवान दिखते हैं वगैरह। हाँ, और उनका सर्वोच्च है भगवान इज सुप्रीम फादर, गॉड इज सुप्रीम फादर, भगवान क्या है सबका पिता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, कैसे भगवान का माता पिता बनना चाहिए वो सिखा रहे हैं, है ना, बहुत अंतर है ना। तो ऐसा कोई धर्म है जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे भगवान का माता पिता बनना चाहिए, है ना, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ईसाई धर्म में ज्यादा से ज्यादा उस हद तक जा सकते हैं, लेकिन कौन भगवान है, कैसे है वो, कि उनका कार्यकलाप क्या है, वो कैसे दिखते हैं, वेणुम कोणंतम अरविंद बदलाया ताक्षम, ये सब चीज उनको पता नहीं है उनको। तो प्रभुपाद बोलते थे आप हमें पीछे पूछिए, हम सब कुछ बताएंगे, भगवान का नाम बताएंगे, उनका पिता का नाम बताएंगे, उनका एड्रेस बताएंगे, सब बताएंगे, बोलते हैं ना वो। सो हिंदी लेक्चर में भी बोलते हैं, है ना प्रभुपाद, सो सब बताएंगे। तो ऐसे तो अन्य शास्त्रों को भी छोड़िए, भारत में भी आप भारत के धार्मिक दार्शनिक और सांस्कृतिक इतिहास आप पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधुनिक लोग इसके बारे में पूरी तरह से अंधकार में है, उनको पता ही नहीं कैसा इतिहास था भारत का। तो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे भारत में, बहुत ही, और उनके संस्कृति में, संस्कृति भी, जीवन शैली और संस्कृति भी बहुत ही बड़ा चढ़ा था। ये भारत का इतिहास देखेंगे तो एक इट्स अ गैलेक्सी, अंग्रेजी आंग्ल भाषा में कहते हैं ना, इट्स अ गैलेक्सी ऑफ साधुज इट इज। गैलेक्सी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे अगिनित अगणित रूप से ब्रह्मांड है, उसको गैलेक्सी कहते हैं ना। तो कई सारे असंख्य वहां पर थारे हैं, ऐसा इतिहास है भारत का। और लोग आप देखेंगे अभी भी यू नो कितने तपस्वी लोग हैं, कितने विरक्त लोग हैं, और कितने प्रकांड पंडित थे, आजकल ज़्यादा कम है, बहुत कम है, सभी आजकल मोबाइल टेलीविजन और डॉलर के पीछे पड़े हैं सब लोग। हाँ, तो ये शास्त्र को अध्ययन करना, ये संस्कृति को समझना किसी को अभी ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट भारत में भी, लेकिन आप इतिहास पढ़ेंगे तो प्रकांड पंडित है। वो एक कथा आती है ना शंकराचार्य बर्हिष्मति, उस दिन बताया मैंने, नहीं बताया, कहाँ पर बता रहा था। तो वो बर्हिष्मति जाते हैं, बर्हिष्मति में उनको एक व्यक्ति से मिलना था, उनका नाम मंडन मिश्रा करके। तो मंडन मिश्रा कौन थे, वो जैमिनी के पाल अनुयायी थे, वो कर्मवादी थे, कर्म आपको बहुत सारे यज्ञ कर्म करना है और ऊंचा लोक को प्राप्त करना है, उनका वही सिद्धांत है जिसको भगवान भी खंडन कर रहे। और मायावादी शंकराचार्य के अनुयायी कौन है, वो कर्म संन्यास लेते हैं वो लोग। ये सब चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे अभी भगवद्गीता में, क्या है ये सब चीज़, कर्मवाद कर्म संन्यास क्या है, ये सब चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे भगवद्गीता में, बार बार ये चर्चा आती है ना। तो वो उनको मिलने के लिए गए, वो उनके साथ वाद करने के लिए, क्योंकि मायावादी लोग कर्म संन्यास लेना श्रेष्ठ है बोलते हैं, और कर्मवादी लोग नहीं, कर्म संन्यास लेना एक बहुत ही व्हाट इज दैट अशुभ है बहुत। कैसे आप यज्ञ को कैसे त्याग सकते हैं, यज्ञ करना बहुत ही शुभ कार्य है ना, कर्म करना कैसे त्याग कर सकते हैं। तो ऐसे वो दोनों का विवाद होता है। जब शंकराचार्य उस गांव में जाते हैं, वो दो महिला वहां पर जाते रहते हैं संस्कृत भाषा में बात करते हुए। तो शंकराचार्य भी संस्कृत में उनको पूछते हैं, ये मंडन मिश्रा के घर कहाँ पर है कर? तो तब तब वो संस्कृत भाषा में वो एक महिला बोलती है कि जिस घर के सामने दो जो व्हाट दे बोलते हैं तोत्या तोते स्वपरावाद को चर्चा कर रहे हैं। ये स्वपरावाद एक ये मीमांस के कुछ सूत्र है ये सब। और मीमांस क्या है, ये मीमांस न्याय मीमांस वगैरह अलग अलग सूत्र होते हैं। वो मीमांस मतलब वेदों के वाक्यों को कैसे समझना चाहिए उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उसको मीमांस सूत्र कहते हैं। स्ववाद परावाद ऐसे कई सारे मीमांस सूत्र है। वो दोनों तोते संस्कृत भाषा में ये मीमांस सूत्रों को चर्चा कर रहे हैं। वो ही मंडन मिश्रा का घर है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, वो तोते ऐसे कर ये सब चीज बात कर रहे हैं, वो भी संस्कृत भाषा में, और मंडन मिश्रा कैसे यू नो, वो मंडन मिश्रा ये सब चीज ट्रेनिंग दिया है तोते को। तोते को आप ये प्रशिक्षण देंगे तो वो लोग ये करेंगे, कर सकते हैं, तो उनका भी बुद्धि बहुत तेजी से चल सकता है ना। तो वो कैसे होंगे कल्पना कीजिए। तो फिर उसके बाद में वो मिलना नहीं चाहते थे, वो लोग मिलते नहीं है सन्यासियों को, सन्यासी कर्म सन्यासियों को, विशेष करके जो मायावादी सन्यासी थे उनको वो अशुभ मानते हैं। जनरली सन्यासी बहुत शुभ है ना, लोग उनको बुलाते हैं, उनका पाद सेवा करते हैं, है ना। तो लेकिन ये कर्मवादी लोग ऐसे सोचते हैं, इन्होंने कर्म को त्याग दिया है इसलिए, तो नियत कर्म को त्याग दिया है इसलिए ये अशुभ है ऐसे सोचते। तो ये भारत का इतिहास है, ये झलक हम दे रहे हैं आपको। तो ऐसे बहुत सांस्कृतिक दार्शनिक दृष्टिकोण से वो प्रसिद्ध है ना, भारत के षट दर्शन, वेद के छह दर्शन है। अलग अलग ऋषियों ने वो वेदों के उप आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना दर्शन उन्होंने सृष्टि किया। वो दे आर स्पेकुलेशंस बेस्ड ऑन वेदास, वेदों के ऊपर मनगणित ढंग से कुछ दर्शन उन्होंने सृष्टि किया, उसको छह दर्शन कहते हैं, षट दर्शन। सो वो छह दर्शन क्या कौन कौन से है, कर्म मीमांसा वो जैमिनी के दर्शन है, न्याय गौतम के न्याय, और पतंजलि के योग, कपिल के सांख्य। ये देहूति कपिल वो नहीं है जो भगवान के अवतार थे, ये नास्तिक कपिल है। तो कपिल के सांख्य और खनादा के वैशेषिका एटॉमिक थ्योरी। तो ऐसे पांच दर्शन है, और छठा है वेदांत जो व्यासदेव के, जो हम लोग पालन करते हैं वेदांत का दर्शन। सो प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति वेदांत। तो ये सभी छह दर्शन है, उनमें से पांच दर्शन ये पूरा नास्तिक है, हालांकि वेदों के ऊपर है, इनको आस्तिक दर्शन माना जाता है क्योंकि वेदों के वो लोग वेदों का प्रमाण देते हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष जो है वो गलत है, इसके कारण इसको भी नास्तिक कहा गया। और भगवान के जो भगवान कृष्ण के जो अधिकार है उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसके कारण ये भी नास्तिक का दर्शन है। तो यहां पर जब प्रभुपाद कहते हैं कि जो एक व्यक्ति कोई व्यक्ति परंपरा में आते हुए एक भक्त के मार्गदर्शन में गीता का अध्ययन करते हैं, तो ये सभी वेदों के जो दर्शन है उससे उनका ज्ञान ऊपर चला जाता है, वो ऊपर चले जाते हैं। इसका अर्थ है वन हु सरपासेस ऑल द स्टडीज ऑफ वैदिक विजडम। समझ में आ गया। तो हम लोग भगवद गीता पढ़ते पढ़ते हम लोग ये सभी छह दर्शन को भी थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि इसका भी चर्चा होता है, भगवान इसको पूरा लेकर आके उसको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं उनको, ये सभी दर्शनों को। सो वेदांत को छोड़कर वेदांत और यू नो वही वेदांत को ही भक्ति वेदांत कहते हैं, क्योंकि उसका वेदांत का निष्कर्ष है भक्ति। भगवद गीता का भी निष्कर्ष भी क्या है, भक्ति। इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या है, भक्ति वेदांत। वो भक्ति वेदांत को वेदांत में भक्ति बताया गया, तो वेदों का वही अंत है, भक्ति वही निष्कर्ष है, वही भगवद्गीता का भी निष्कर्ष। इसलिए एक व्यक्ति तुरंत ही वैदिक ज्ञान, पाश्चात्य देश के अन्य शास्त्रों को छोड़िए, वैदिक ज्ञान को भी वो पूरा ऊपर चले जाते हैं। तो ये सिर्फ भगवद्गीता समझने से, ये भगवद्गीता का महिमा है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं, तो भगवद्गीता में अन्य जो भी शास्त्रों में बताया गया है वो भी हम लोग पाते हैं, और जो वहां पर जो वर्णन नहीं किया गया उसको भी हम यहाँ पर भगवद्गीता में पाते हैं। ये भगवद्गीता का महिमा है। पढ़ेंगे उसको, समझ में आ रहा है मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? पढ़िए पढ़िए, यू कैन रीड, योर वॉइस इज गुड। फर्स्ट परपर्ट, इफ वन इज फॉर्चुनेट, समवन इज फॉर्चुनेट एनफ टू अंडरस्टैंड भगवद्गीता इन द लाइन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन, यू आर सीइंग देयर इन द परपर्ट वन। Someone else found it?
Yes.
Loudly speak, loudly. Loudly read. He is also searching. Read. Your voice is not clear. Yeah.
पाठक को भगवद्गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं।
क्यों आप दूसरे इधर उधर भागना चाहिए, वो ग्रंथ पढ़ना, ये ग्रंथ पढ़ना, वो पढ़ना, ये पढ़ना, हाँ काफी नहीं है इतना? कितना महिमा है ना भगवद्गीता का। तो इसलिए यथारूप बहुत अच्छी तरह से हमें इसको अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। और प्रभुपाद वो चौथे अध्याय के 41वां श्लोक के तात्पर्य आरंभ ही करते हैं। तो सभी वे अभी सभी शास्त्रों में से भगवद्गीता सर्वोच्च है ऐसे कहते हैं। या 441 फर्स्ट लाइन ऑफ द परपट। और 11वें अध्याय के 48वां श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद कहते हैं कि although भगवद्गीता इज कंसिडर्ड प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ गॉड स्टिल इट इज सो परफेक्ट दैट इट एनेबल्स वन्स टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज व्हाट। तो 1148 परपट, हालांकि इसको आरंभिक अध्ययन माना गया है, भगवत विज्ञान का आरंभिक अध्ययन है ये, भगवत शास्त्र या भगवत विज्ञान का आरंभिक अध्ययन है, फिर भी हमें इससे पता चलता है कि क्या है वास्तव में। देखेंगे हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद भी एक जगह वर्णन करते हैं कि भगवद्गीता क्या है, ये भी सीढ़ी है ये। आप अन्य शास्त्रों को तुलना करेंगे, मतलब विशेष करके भागवत से तुलना करेंगे तो क्या है ये, भगवद्गीता ये भी सीढ़ी है। श्रीमद भागवत से तुलना करेंगे तो भगवद्गीता ये भी सीढ़ी है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि दिस इज फॉर इन्फेंट क्लास, भगवद्गीता इज फॉर इन्फेंट क्लास ऐसे कहते हैं। और भागवत में भी यह वर्णन आता है ना, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, उनके लिए भी महाभारत लिखा गया और महाभारत में इसको भगवद्गीता लिखा गया। तो वास्तव में ये ABCD है, आप देखें भगवद्गीता, लेकिन ये भी बहुत कुछ है। दूसरे शास्त्रों को तुलना करेंगे, दूसरे देश के शास्त्रों को तुलना करेंगे, या वैदिक ज्ञान ये षट दर्शन को तुलना करेंगे, तो भगवद्गीता बहुत ही ऊपर है। भारत में तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये षट दर्शन के ऊपर वाद विवाद करना, लेकिन भगवद्गीता उससे भी श्रेष्ठ। हजारों सालों तक ये षट दर्शन में वाद विवाद चलता आ रहा है भारत में, मेरा जो दर्शन है श्रेष्ठ है, मेरा दर्शन श्रेष्ठ है, ऐसे वाद विवाद चलता। भारत उसके लिए भी जाना जाता है लोग, है ना। पाश्चात्य देश में क्या होता है, इस्लाम और ये ईसाई धर्म में लोग एक दूसरे को मारपीट करते ही पूरा उनका इतिहास ही वही है, एक दूसरे को अभी भी चल रहा था ना इराक में या ईरान में, सुनी और शाही बीच, शिया सुनी के बीच में युद्ध चलता जाता जा रहा है। यही इतिहास है पाश्चात्य देश का इतिहास या अन्य धर्मों का इतिहास, एक दूसरों को काटना काटना काटना, मारना मारना। भारत में भी ऐसे धार्मिक युद्ध होते थे, वो कैसे होते थे, वो वाद विवाद का युद्ध है, फिलोसॉफिकल वार्स। लेकिन ये सभी फिलोसॉफिकल वार को एक ही समय में भगवद्गीता क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये भगवद्गीता का महिमा है। तो हम इसलिए प्रभुपाद बोले ना, वो उनके शिष्य को, उनके शिष्य ने खत लिखा, मैं दक्षिण भारत में प्रचार कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ है, कैसे उनको सामना करूँगा। प्रभुपाद बोले भगवद्गीता का 30 श्लोक पाठ करो, तुम सबको ही सामना कर पाओगे, ऐसे बोले। बस 30 श्लोक ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी खत्म नहीं हुआ, कोई प्रश्न पूछना चाहते थे इसलिए ये गीता परिचय अभी खत्म हो गया। कितने विषय हम लोग चर्चा किए, 22 विषय चर्चा किए। बोले उसको ही प्रारब्ध कहते हैं, फलोन्मुख मतलब अभी जो फल दे रहा है उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो वो श्लोक है ना विष्णु पुराण से या पद्म पुराण से, विष्णु पद्म पुराण, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलियते विष्णु भक्ति रतात्मनः। जो विष्णु भक्ति में लगते हैं उनका ये सभी स्तर के जो कर्म के जो फल है उसका नाश हो जाता है क्रम से। क्रम से मतलब दो अर्थ होते हैं, धीरे धीरे धीरे, और दूसरा है पहले अप्रारब्ध, अप्रारब्धम फलम पापम, अप्रारब्ध से शुरू होता है ना वो क्रम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, पहले अप्रारब्ध कर्म खत्म होते हैं, फिर कूट, फिर बीज और फलोन्मुखम, तो ऐसे खत्म होते हैं ठीक है। भगवद्गीता चूंकि प्रभुपाद जी ने यह सब सिखाया है तो उनको पालन यथारूप करना चाहिए हम लोगों को। प्रभुपाद जी एक जगह पर वो रिकॉर्डिंग में है, देखो ये सुबह का ट्यून है, दिस इज मॉर्निंग ट्यून, ऐसे जोर से बोलते हैं प्रभुपाद। हाँ वो भी रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग है, चाहे तो ले सकते हैं आप। आजकल बहुत सारा वो अलग 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 ट्यून गाते हैं सुबह सुबह सुबह, वैसे नहीं करना चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया है वैसे ही हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हमारे संप्रदाय भी अपसंप्रदाय हो जाएगा, नष्ट, फिर से भगवान को आना पड़ेगा परंपरा स्थापित करने के लिए ठीक है। लेकिन आप भगवान आएंगे, भगवान भगवद्गीता नहीं बोलेंगे इस बार, इस बार क्या बोलेंगे, भगवान म्लच्छ निवाह निधने पर्वति करवालम धूमकेतुमीव किमपि करालम केशव द्रुत कल्कि शरीरा जय जगदीश हरे। वो भगवद्गीता बोलने के लिए नहीं आएंगे, एक हथियार लेकर आएंगे वो। क्योंकि सब म्लच्छ यवन बन, धीरे धीरे सब लोग ऐसे ही बन रहे हैं ना, म्लच्छ यवन बन रहे सभी, अभी समाज पतित होते जा रहा है, तो इसलिए हम लोगों को जागरूक रखना।
सब जगह में ऐसे भ्रष्ट कैसे हो, ज्यादा से जगह में
हाँ, वो क्या होता है आजकल ये सभी मशीन आ गया ना सब लोग, और सभी ऑडियो प्लेयर आ गया, इधर उधर वृंदावन में इधर उधर जाते हैं, दूसरा दूसरा मंदिर में जाते हैं भक्त लोग, और वहाँ पर वो सब सुनते हैं, वो रिकॉर्डिंग करते हैं और सुनते हैं वो सब चीज़, रिकॉर्डिंग में सब जगह फैलता है ये सब चीज़ हाँ, और सुन के सुन के भक्त लोग भी गाना शुरू कर दिया, और कोई जो प्रभुपाद जी ने गाया है वो सुनते नहीं है, और जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो सुनते नहीं है। भागवत के 8वें स्कंद के पंचम अध्याय के 25वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते, देखो हमारे मंदिर में हम दो मंत्र गाते हैं, बोलते हैं, एक है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद, और दूसरा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सिनेमा के गाना नहीं गाते हैं ऐसे बोलते, ऐसे लिखा प्रभुपाद, हम सिनेमा के गाना हम लोग नहीं गाते हैं, तो ये दो मंत्र गाना गाते हैं हम लोग, और उसके बाद में थोड़ा और भी लिखते हैं, जैसे महान आचार्यों ने जो लिखा है, लोचन दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर या नरोत्तम दास ठाकुर, ऐसे महान आचार्यों ने लिखा हुआ गीत हम लोग गाते हैं। ऐसे अलग अलग दूसरे दूसरे मंदिर में जाकर कुछ सीख लिए, कुछ चीज ऐसे ऑडियो में आ जाते हैं, सीडी में, है ना, सीडी में आ जाते हैं, कुछ कुछ चीज कैसे आ गए, कुछ चीज वह लिख ग्रंथ में भी आ गए, कोई ऐसे सॉन्ग शब्द वैष्णव आचार्य, व्हाट इज दैट, एक ऐसे ग्रंथ आया था पहले इस्कॉन में बहुत, वो अदर सॉन्ग शब्द वैष्णव आचार्य ऐसे कुछ ग्रंथ, उसमें कई सारे ऐसे आचार्यों ने जो नहीं लिखा वो ऐसे गाने थे, उसमें गीत थे उसमें, तो उसके कारण भी कुछ सीख लिया। ठीक है, कैसे कैसे 8-5-25 के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, बहुत जगह बोला है उन्होंने, बहुत जगह बोला है। वो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को क्या मंत्र दिया गया था, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र, लेकिन प्रभुपाद उसके अनुवाद में क्या लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार ज्यादा करना चाहते थे। वृंदावन में कोई उनको राधे राधे बोलते हैं तो प्रभुपाद हरे कृष्ण बोलते थे, वो नहीं राधे राधे नहीं बोला उन्होंने, समझ में आ रहा है। आप उनके लीलाओं को देखिए, उनके शिक्षाओं को देखिए, उनके ग्रंथों को देखिए, सब जगह आपको मिलेगा, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, नारद मुनि ने क्या गा रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र गा रहे थे, ऐसे छठे अध्याय के छठे स्कंद के एक तात्पर्य में ऐसे वो पूरा गीत को वहां पर वो उल्लेख करते हैं, और उसके उसमें क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र में राधिका राधिका रमन का नाम है, हरे कृष्ण मंत्र ही हरे मतलब राधा, कृष्ण मतलब राधिका रमन, तो हम लोगों को बदलना नहीं चाहिए, वो परंपरा नहीं, वो यथारूप नहीं है। ठीक है, और कुछ, बहुत जगह चैतन्य चरितामृत में भी भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम ऐसे कुछ कुछ वैष्णव भी गाते हैं, लेकिन हम लोग उनको सम्मान करते हैं, उनके भी कुछ क्या है सेंटिमेंट्स भावनाएं हैं, लेकिन हम लोग हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे ऐसे बोलते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो इसके विरुद्ध युद्ध ही छेड़ दिया था उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो इतना हद तक वो झगड़ा हो गया, भक्ति विनोद ठाकुर उनको मायापुर भेज दिए, ये लोग ठीक लोग नहीं है, अच्छा है आप मायापुर में जाओ, मायापुर का डेवलप करो, ऐसे भेजा उन्होंने जगन्नाथपुरी में, ये लोग ये ना ये नया कीर्तन शुरू किया था ना, ये लोग तथाकथित चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, तो उसका बहुत सारा वर्णन है ये सब चीज। और कुछ, ऐसे आ गए अलग अलग रीति से आ जाते हैं, कुछ नया नया सुनाना चाहते हैं भक्त लोग कुछ नया सुनाना चाहते हैं, कुछ आनंद हमारा हमारा कैसे होना चाहिए, भगवान को जो प्रसन्न करने वाला है वो श्लोक में ब्रह्मा जी का प्रार्थना है, वो 8:15-25 आठवें स्कंद के पांचवे वहां पर वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ऐसे प्रार्थनाएं अर्पण किए भगवान को जो परंपरा में आए हैं, तो वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो है कि नहीं। और कुछ,
मेरी वाणी का प्रचार करता है, उसके विचार कोई मुझे उससे गोपियों से बढ़ के अधिक कुछ भी थे। वो बताते हैं कि भगवतम ने भी भगवान आत्मा राम उनको न कुछ प्रिय है मेरे भी
बहुत सारा प्रश्न आपने मिला दिया। अच्छा एक एक करके है ना, उसमें बहुत सारा प्रश्न मिल गए ना। या भगवद गीता में कहते हैं मुझे कोई प्रिय भाई अप्रिय फिर भी मेरे भक्त प्रिय है ऐसे बोलते हैं ना। एक प्रश्न था, ये था आपका विरोधाभास कैसे है। या तो भक्तों में भी अलग अलग स्तर होते हैं। वास्तव में सभी शुद्ध भक्त है, सभी लोग शुद्ध भक्त है, लेकिन रस के दृष्टिकोण से गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, उसमें से श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है ना, रस के दृष्टिकोण से। तो भगवद्गीता का सार क्या है, सर्वधर्मां परित्यज मामेकं शरणम्। ऐसे कोई भक्त हुए है इतिहास में जो गोपियों जैसे जितना वो शरणागत किया भगवान को उतना कोई शरणागत हुए। अपने उदाहरण से वो प्रचार कर रहे हैं ना भगवद्गीता को, समझ में आएगा। तो आश्लिष्य वा पादरताम पि नष्टु माम अदर्शना मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आप मेरे सामने प्रकट होइए न होइए, या आप मेरे आपके पादों के तले पर तले कुचल दीजिए, या आपको बहुत ही गाढ़ आलिंगन कीजिए, फिर भी कुछ कैसे भी आप मेरे से बर्ताव करेंगे फिर भी मैं आप हमारे स्वामी हैं। ऐसे गोपियों ने ही किया, चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना करते तो गोपियां उदाहरण है उसके लिए। तो कौन है स्त्री, विशेष करके वैदिक सभ्यता में कोई रात को घर से बाहर निकलते तो फिनिश खत्म हो गया उसका जीवन। ऐसा स्थिति में कौन उतना त्याग करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाएंगे, ऐसा कोई है उतना समर्पण भाव किसी के पास है। हम सब लोग यहाँ पर बैठे, एक दिन प्रसाद नहीं मिल गया, एक दिन रात को नींद नहीं हुआ तो क्या होगा। सेवा चलेगा, सेवा नहीं चलेगा ना। तो इतना समर्पण भाव कौन, ये भगवद्गीता का परिपूर्णता है, चरम शिक्षा है भगवद्गीता का। ठीक है,
जैसे भगवद्गीता में आपने बताया जो अध्ययन हम करते हैं तो अगले जीवन में जो लाभ मिलता है क्या लाभ मिलता है
अगले जीवन में। नेहा विक्रम नाशस्ति, मतलब जितने यहाँ जहाँ हमने छोड़ दिया है तो वो फिर से वहां से आरंभ हो जाएगा, वो यथारूप हमारे साथ रहेगा। जो जितना भी हम लोग उसको अध्ययन समझा है अध्ययन किया है वो अर्थ है उसका। याद रहेगा तो है ना, कोई कोई लोग तुरंत ही वो याद कर लेते हैं ना, तुरंत ही याद कर लेते, कोई कोई को लंबे समय लगता है। क्यों वो लंबे समय लगता है, क्योंकि पिछले जीवन में वो किया नहीं याद है ना, है कि नहीं। जाए when I am answering better your close okay you wanted to ask something nahi finish sir
ek baar ye
ठीक है, पढ़ने का भी प्रभाव रहता है ना, है कि नहीं? बार बार सुनेंगे तो उसको अपनाएंगे हम लोग। क्यों अपनाते नहीं हम लोग? क्योंकि ठीक तरह से सुना नहीं है। ठीक तरह से सुन लिया, पढ़ने का मतलब क्या है? सुनना। रीडिंग इज टू हियरिंग इट। सो श्रवण कर, क्यों हम लोग जीवन में पालन नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम लोग श्रवण नहीं करते हैं। सो इसलिए अच्छी तरह से श्रवण करेंगे तो पालन भी करेंगे। श्रवण करने का वहां तो प्रभाव भी रहता है। पुण्य श्रवण कीर्तन है ना ये, ठीक है। पालन करेंगे तो और भी लाभ होगा, श्रवण का भी महत्व रहता है। और कुछ या इसका अर्थ है कि वो फर्दर स्टडी भगवद्गीता का ही एडवांस स्टडी, एडवांस भगवद्गीता है ना। मैथमेटिक्स 2+2 = इज मैथमेटिक्स, और इंटीग्रेशन कैलकुलेशन वो भी मैथमेटिक्स है ना। तो फर्दर स्टडी है, भगवद्गीता का ही आगे का अध्ययन है भागवतम। भगवद्गीता यह सिद्ध करता है कि भगवान कृष्ण परम देवोत्तम पुरुष है और उनकी लीलाएं भागवत में वर्णन है, बस। ठीक है, एक हफ्ता उसका अर्थ है कि हमें जो बोलते हैं गलत समझना चाहिए, नहीं चाहिए। अब हर बार पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने भी बताया उसको, हर बार पढ़ेंगे तो नया साक्षात्कार मिलेगा आपको ऐसे करके। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हर रोज एक ही श्लोक पढ़ते रहो। एक ही श्लोक पढ़ेंगे तो भी आपको साक्षात्कार मिलेगा। हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ते हैं, एक ही सा। लेकिन हम लोगों को क्या है, रुचि नहीं है। जब किसी को जॉन्डिस, जब किसी को विच रोग इट इज, जॉन्डिस मीन्स पीलिया हो जाती है, तो किसी को पीलिया हो जाती है तो उसको वो शक्कर भी देंगे तो वो कड़वा लगता है ना। क्योंकि हमारे अभी वो हृदय रोग है, अज्ञान है, ज्ञान से आवृत है, इसलिए हालांकि यह अमृत है लेकिन फिर भी हमें कुछ साक्षात्कार नहीं होता है, ठीक है। उसके कारण तो थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा और जप करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो भी जब वो पीलिया चला जाता है, ऐसे ही शक्कर लेते 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 रहेंगे तो उसका स्वाद फिर से जागृत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग भगवद्गीता इसलिए पढ़ते नहीं कि पापों से मुक्त हो जाए, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि भगवान को भक्ति और अच्छा हो जाए। तो भीष्मदेव क्या है, वो दिखा रहे हैं सबको, ऐसे स्थिति में भी ये कैसे भगवान को स्मरण कर सकते हैं। भगवान ऐसे उनके लीलाओं को, ऐसे भक्तों के लीलाओं को ऐसे व्यवस्था करते हैं हम सबको सिखाने के लिए, कि ऐसे स्थिति में भी कैसे। नहीं तो बद्धजीव सोचेंगे ये भक्ति मेरे लिए नहीं है, मैं इतने सारे कष्ट में हूँ, इतने सारे समस्याएं हैं, कैसे मैं ये कर पाऊंगा, ऐसे वो लोग। तो उनको सिखाने के लिए तो ये सब भक्तों का लीलाएं व्यवस्था करते हैं। महाभारत में वगैरह ऐसे आप अन्य पुराणों में ऐसे मिलेगा आपको, इतने तितलियों को वो भीष्मदेव एक महाजन है, वो महाजन है और भगवान के इतने शुद्ध भक्त है, क्यों उनको कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। जो विष्णु भक्ति रतात्मना वो कर्म का नाश हो जाता है ना, है कि नहीं। लेकिन भगवान उनको ऐसे स्थिति में रखते हैं, भगवान के लीला शक्ति के द्वारा वो ऐसे स्थिति में लीला करते हैं ताकि बद्ध जीवों को प्रेरणा मिले। नहीं तो बद्ध जीव सोचेंगे भक्ति मेरे लिए नहीं है, वो सिर्फ मुक्त आत्मा उनके लिए है करके। लेकिन जरूरी नहीं कि हम लोग ऐसे तकलीफ लेना चाहिए, जानबूझकर हमें ऐसे तकलीफदायक स्थिति में हमें अपने आप को डालना चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना सुविधाजनक हो सकता है। तो इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम धर्म क्या है, वो एक सुविधाजनक समाज है। भौतिक जगत दुकालय है और दुकालय है, दुखी है इस जगत में, लेकिन वर्णाश्रम क्या करता है, कुछ हद तक हमें सुखी जीवन बिताने के लिए सहायता करता है। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम सिस्टम जो व्यवस्था है, लोग वो भगवान ने दिया हुआ ये सिस्टम है। लेकिन लोग, भौतिकवादी लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोगों ने सोचा, क्या सोचा, हम लोग तकनीकी और विज्ञान के प्रगति के द्वारा ये समाज को सुविधाजनक, जीवन को सुविधाजनक बनाएंगे। तो उसके नतीजा क्या हो गया, सब कुछ असुविधाजनक। अब देखो कितने सारे समस्याएं हैं आजकल, पोल्यूशन के कारण सबका हेल्थ बिगड़ गया है, सब लोग कितने रोगों से पीड़ित है ना। पहले जमाने में बुढ़ापा में मरने के एक क्षण पहले थोड़ा बहुत कुछ हो जाता था और तुरंत मर जाते थे लोग। आजकल युवा पीढ़ी ही रोगों से भरा है, उनका शरीर रोगों व्याधि मंदिर बन गया। तो तकनीकी का प्रगति हमें जीवन को सुविधाजनक नहीं बनाते हैं। इट इज जस्ट इल्यूजन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज जस्ट इल्यूजन ऑफ कंफर्ट सेटस। लोग ऐसे सोचते हैं कि ये हमें सुविधाजनक बना रहा है करके, वास्तव में वो बहुत सारे असुविधाओं को अपने जीवन में लेके आ रहा है। पहले जमाने में चल के जाते थे या बैलगाड़ी लेते थे या हॉर्स कैरेजेस होता था, वो घोड़े के ऊपर चलते हैं तो वो एक एक्सरसाइज है शरीर के लिए। आजकल ये मोटर कार बना दिया, मोटर कार बना के कितने सारे समस्याओं का अपने सर पर बोझा लिया उसने। ये बरमुद बवतो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विमूढ़ मूर्ख लोग ऐसे बोझा लेते हैं जीवन में, शरीर में इतने सारे रोगों का बोझा। तो इसलिए हमें ऐसे जो भगवान ने दिया है वैसे सुविधा में, जानबूझकर तकलीफ में डालना नहीं चाहिए अपने आप को, ठीक है। यू कैन नॉट गो ऑन डूइंग एडजस्टमेंट। वो सिर्फ महान आचार्य जैसे प्रभुपाद, कुछ एडजस्टमेंट सब लोग कर सकते हैं। जैसे आप आरंभ में जो कोई व्यक्ति आता है, आप तुरंत उनको नहीं बोल सकते कि 16 माला जप करो करके, कम से कम शुरुआत 16 माला वो भी बोल सकते हैं उनको कि 16 माला स्टैंडर्ड है, कम से कम 4 तो करो करके, ऐसे कुछ ये एडजस्टमेंट हो गए ना, है कि नहीं। आप ऐसा नहीं कि 16 माला को ही 4 माला ही काफ़ी है करके ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज जो संस्थापक आचार्य है, महान भक्त जैसे प्रभुपाद जैसे महान आचार्य है, वो कुछ एडजस्टमेंट, यू नो देयर इज लिमिटेशन फॉर एडजस्टमेंट, जो एडजस्ट करने में कुछ सीमाएं हैं हम लोगों के लिए। वो महान आचार्य जैसे प्रभुपाद ही वो ऐसे उनके जो उन्होंने जो एडजस्टमेंट किया है उससे परे हमें जाना नहीं चाहिए। हम प्रभुपाद जी ने 64 माला से 16 माला किया, मैं अभी 4 माला करूंगा, ऐसे करेंगे तो तुम भी नहीं जाओगे, आप भी नहीं भगवत धाम जाओगे, और जो आपके जो फॉलो कर रहे हैं वो भी नहीं जाओगे, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। कुछ सीमाएं होते हैं सबके लिए, ठीक है। या शास्त्रों में अलग अलग दिया गया है, लेकिन वो कर्मवादी जो आसक्त है भौतिक भोग के प्रति, उनको आकर्षित करने के लिए ये सब वर्णन किया गया। जैसे रूप गोस्वामी जो 64 अंग का वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें हर एक के लिए वो एक शास्त्र का प्रमाण देते हैं। वो शास्त्र में क्या बताया गया है, शास्त्र प्रमाण जो देते हैं, ये अंग करने से आपको ये लाभ मिलेगा। लेकिन अंत में रूप गोस्वामी बोलते हैं ये उद्देश्य नहीं भक्ति करने का, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रेम करना, वो उद्देश्य है। तो हालांकि शास्त्र में वो वर्णन हुआ होगा, लेकिन सार हम लोग क्या है, सार क्या है, इसलिए वर्णन किया ना हम लोग, भगवद्गीता का सार क्या है, ये फल वगैरह सार नहीं है। ये अध्ययन पाठ करने से आपको क्या मिलेगा, आप ऊंचे लोक में जाओगे, वो जाओगे, वो सब ठीक है, वो दे आर ऑल साइड प्रोडक्ट। मेन क्या है, भगवान के प्रति आकर्षण जागृत करना। वासुदेव भगवती क्या है, समय वही केवलम धर्म समुष्ठित पुंसा विश्वक्षेनु कथाशया नोत्पादयेद् यदिरतिम समय वही केवलम, वो शम ही है। ठीक है, और कुछ सामुदायिक, व्हाट इज द वर्स देयर टेल, हाँ। सो दो प्रकार के धर्म होते हैं, कुल धर्म और जाति धर्म। जाति मतलब ये क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन उनमें से भी अलग अलग कुल होते हैं। अलग अलग कुल के ब्राह्मण होते हैं, अलग अलग कुल के क्षत्रिय होते हैं, अलग अलग कुल के ब्राह्मण अलग अलग उनका क्या होता है, तो धर्म होता है, उसका नाश होता है। यू वॉन्टेड टू आस्क समथिंग नो, गीता महात्म्य हु हैव रिटन, गीता महात्म्य व्हाट इज दैट, प्रभुपाद जी ने नहीं दिया, इसलिए हम लोग उसके ऊपर, प्रभुपाद जी कुछ नाम नहीं दिए, सिर्फ गीता महात्म्य करके बताया उन्होंने, कौन लिखा उसको पता नहीं है। ऐसे कई सारे श्लोक है, हाँ, वो रूप गोस्वामी भी एक ग्रंथ रचा है ना उन्होंने, पद्यावली करके। पद्यावली मतलब वो अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग जगह से श्लोक इकट्ठा करके उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसे कई सारे शास्त्र है, कई सारे श्लोक है, तो कौन लिखा हमें पता नहीं है, प्रभुपाद जी ने कोई नहीं बताया, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं वो उन्होंने बताया कि उसमें नहीं लिखा है, दिस डजंट कम इन दैट लाइक दैट ही सेड। या बट एनी वे प्रभुपाद हैज नॉट गिवन, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, दैट इज अवर स्टैंडर्ड। ये श्लोक है, ये श्लोक है, ये श्लोक है, ये जो सात श्लोक दिया गया है वो श्लोक है। ठीक है, देख लीजिए आप, और कुछ उल्लेख किया है उन्होंने। सो मध्वाचार्य के जो ग्रंथ है उससे वो मूल शास्त्रों के जो श्लोक है उनको लिया है उन्होंने।
तो
नहीं, चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी इंक्लूड्स मध्वज फिलोसफी, दैट इज अ मीनिंग. चैतन्य महाप्रभु दो तो चीज लिए ना उनसे, अंत में वो परिपूर्ण नहीं है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और ब्रह्म संहिता के अपने तात्पर्य में 62वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ये सभी अलग अलग जो दर्शन है उन्होंने बताया, हम उसको चर्चा करेंगे आगे जाके. तो दैट इज ऑल्सो स्पेकुलेशन, ही सेड मध्वाचार्य फिलोसफी इज ऑल्सो स्पेकुलेशन. वो जरूरत था, हम लोग मध्वाचार्य को निंदा नहीं कर रहे, उस समय वो जरूरत था क्योंकि शंकराचार्य का इतना प्रचार हो गया था, सब लोग अभी भी ना, अभी भी उसका प्रभाव है शंकराचार्य का मायावाद फिलोसफी. उस दिन मैं हैदराबाद में लेक्चर दे रहा था, ये गोविंद है ये, वो एक व्यक्ति प्रश्नोत्तर के समय में ये गोविंद, यहाँ पर गोविंद है, यहाँ पर गोविंद है, यहाँ पर गोविंद है, सब गोविंद है, ऐसे बोला. मैंने बताया यहाँ पर गोविंद के अंश है, गोविंद नहीं है. ममई वामशो जीवलोके, उसका प्रभाव इतना है, विशेष करके उत्तर भारत में है ना, लोग इतना सेंटिमेंटल है लोग, तो उसका प्रभाव बहुत है. तो उसको खंडन करने के लिए उनको जोर देना पड़ा मध्वाचार्य को. मध्वाचार्य की गलती नहीं है, उस समय पर जरूरत था, ठीक है, वो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स, दैट इज द पॉइंट. सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते आप, है कि नहीं. लेकिन अचिंत्य वेदावेदी परिपूर्ण तत्व है, वो सब वाद है, ये तत्व है, समझ में आ गया. द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, सब वाद है. लेकिन ये क्या है वाद, मतलब क्या, अपने मत को प्रस्तुत कर रहे हो, तत्व है ये, सत्य है, इसको कोई मना नहीं कर सकते, नकार सकते, खंडन कर सकते. है ना, और कुछ?
तो गोपाल ने, प्रभुपाद जी ने जब उसका एक तात्पर्य लिखा, तो प्रभुपाद जी को कैसे पता चला कि भगवान का मतलब ये था, भगवान ये कहना चाहते थे, अर्जुन ये कहना चाहते थे, क्योंकि वो सब तो,
क्योंकि उन्होंने उनको गुरु गुरु से प्रशिक्षण लिया था उन्होंने.
लेकिन प्रभुपाद जी ने तो बोला ना कि मैंने तो शास्त्रों से लिखा, इसका तात्पर्य लिखा है,
मैंने जो यथारूप का अर्थ बताया, दो अर्थ बताया, एक चीज की परंपरा में वो ज्ञान आता है, दूसरा चीज है वो शास्त्र के ऊपर भी आधारित रहता है, क्योंकि परंपरा आचार्य शास्त्र से ही बोलते हैं. समझ में आ गया या बोले आपका प्रश्न क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे, जो भगवान ने ऐसे बताया जो शास्त्र में नहीं था,
कुछ कुछ बातें ऐसे भी मैंने कभी उनका भी तात्पर्य बताया, शास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी, जब गुरु परंपरा से ही सब समझ गए थे प्रभुपाद जी, शास्त्रों की हेल्प लेके उन्होंने तात्पर्य क्यों लिखा?
क्योंकि शास्त्र प्रमाण, गुरु साधु शास्त्र, ये तीनों में से तीन प्रमाण है कि नहीं, हमारा आधार है गुरु साधु शास्त्र. सो साधु मतलब ये परंपरा के आचार्य, गुरु मतलब प्रभुपाद जी, आप लीजिए आप ऐसे मानिए आप ये, कि इन तीनों में से शास्त्र केंद्र है, सेंट्रल, इसलिए. और प्रभुपाद जी वो 17वें अध्याय के वो श्लोक है ना, कि वाक्य तपस्या, वाणी के तपस्या के बारे में चर्चा आती है. वाणी के तपस्या है कि शास्त्रों को पाठ करना. वहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब भी कुछ चर्चा होती है, उसके तात्पर्य में लिखते हैं, जो विद्वानों के समूह में हमेशा शास्त्रों से आधार दिया जाता है इसको। सो जैसे आप न्यायालय में जाएंगे, वहाँ पर न्यायाधीश वाद विवाद करते रहते हैं, लॉयर्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लॉ बुक, न्याय के जो ग्रंथ होते हैं, उनसे हमेशा जो भी बोलते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हम लोग भी जो वो उसको विद्वत रूढ़ी कहते हैं, एक लोक रूढ़ी और जन रूढ़ी ऐसे कुछ होता है, अज्ञ रूढ़ी, सॉरी अज्ञ रूढ़ी मतलब वो लोग परवाह नहीं करते शास्त्रों का, विद्वत रूढ़ी मतलब शास्त्रों के आधार पर चर्चा करना या शास्त्रों के आधार पर प्रस्तुत करना, उसको विद्वत रूढ़ी स्कॉलरशिप कहते हैं उसको, स्कॉलरली प्रेजेंटेशन। तो जब तक आप शास्त्रों को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको वो उसको विद्वत रूढ़ी नहीं माना जाता, समझ में आएगा, इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी प्रश्न उठता है भगवद्गीता में, अभी प्रभुपाद जी बताए कि वो वेद का अन्य शास्त्रों में जो मैं नहीं मिलता वो भी मैं यहाँ पर है, इसका अर्थ है कि जो ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र दिया है वेदों में रहेगा वो, लेकिन छुपा हुआ रहेगा, उसको आचार्यगण उसको क्या करते हैं, खोल देते हैं, प्रकाशित करते हैं, समझ में आएगा। अन्य शास्त्र मतलब जो कुरान है, बाइबल है, और जो वेदों के दर्शन हम चर्चा कर रहे थे ना, वैदिक दर्शन, षट दर्शन, उससे भी श्रेष्ठ है भगवद्गीता, ठीक है। और कुछ है? ठीक है। सो 12:21, तो अभी हम लोग भूमि का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पूरा उसको, फिर भी क्योंकि ये भगवद्गीता यथारूप को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इसलिए पढ़ना चाहिए उसको, हम लोग पढ़ेंगे उसको, कुछ बोलना है तो मैं बीच बीच में बोल देता हूँ कुछ चीज़ जो वर्णन चर्चा नहीं किया गया। सो हु विल रीड दिस?
Come read nicely. Our Lalita Krishna Guru are one of the read.
Can be there. Let me read the fifth part. You can read. Contribution. You read. But his voice is not clear.
From Bhagavad Gita. And translation also.
Om Agyan Timirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamahyam Dadati Subhadantikam। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगुण रघुनाथान्वितां तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ।
मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हे कृष्ण आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं, आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने की सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
लिखने से पहले मंगलाचरण बोला जाता है, इसलिए प्रभुपाद हम उस दिन चर्चा किए ना क्यों मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण क्यों बोला जाता है, चैतन्य चिंतामणि के आदि में। सो कृष्णदास कन्हैया गोस्वामी इसको वैसे ही यहाँ पर यही सिस्टम होता है, वैदिक सभ्यता में ऐसा ही सिस्टम है। पहले मंगलाचरण बोल रहे हैं, कोई भी हम लोग ग्रंथ रचना करने से पहले ऐसे ही नहीं, जैसे अंग्रेजी भाषा में शुरू होता है ना ग्रंथ, ऐसे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं।
भगवत गीता को गीतेंद्रिय से भी कहा जाता है, यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है।
जब हम लोग भगवदगीता क्या है हम इसको उल्लेख किए थे ना, समझो पढ़े थे ना,
निसंदेह भगवद्गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद्गीता की एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद्गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कई कठिनाइयों से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद्गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है।
तो कहां पर इसको हम लोग पढ़े थे,
किसी को पता है, याद है कहां पर पढ़े थे हम लोग, कहां पर ये क्या विषय यहां पर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद? भगवद्गीता यथारूप आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे ना यथारूप के बारे में, है ना, ये पढ़े थे ना हम लोग, याद है सबको, कोई बोल नहीं रहे।
भगवद्गीता का मर्म भगवद्गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते, इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद्गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए।
तो
हम लोग इसको भी पढ़े थे, पता है कब? भगवद्गीता कैसे समझना चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं भगवद्गीता कैसे समझना चाहिए। वो भगवान कृष्ण के सीधे मार्गदर्शन में हमें भगवद गीता समझना चाहिए, क्योंकि वही वक्ता है भगवद गीता। ठीक है, भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप से हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
तो
यहाँ पर प्रभुपाद अलग अलग प्रमाण दे रहे क्यों भगवान कृष्ण भगवान है, कोई बताएंगे कितने प्रमाण दे रहे प्रभुपाद यहाँ पर, बताइए। पहला क्या है, पहला पहला है भगवद गीता में हर एक पेज में हर बार उनको भगवान करके संबोधित किया गया है। पहला पहला ये प्रमाण है कि वो कृष्ण उवाच नहीं है, भगवान श्री भगवान उवाच है। तो आप लिख लीजिए भगवान क्यों कृष्ण, कृष्ण ही क्यों भगवान है, ऐसे लोग पूछेंगे तो ये सब प्रमाण देना चाहिए आपको। पहला प्रमाण क्या है कि वो भगवद गीता में उनको भगवान करके संबोधित किया गया है। अभी एक और प्रश्न उठता है कि भगवान तो कभी कभी एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी संबोधित किया जाता है, लेकिन प्रॉपर वर्णन करते हैं सिर्फ वो भगवान एक शक्ति, कृष्ण एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है। उसके लिए और प्रमाण क्या है, तो और प्रमाण कौन सा है बताइए। और नेक्स्ट अगला, तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्कचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु और अन्य वेदों के वैदिक ज्ञान के अधिकारी है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। ये दूसरा प्रमाण है। और तीसरा प्रमाण क्या है बताए, तीसरा प्रमाण स्वयं भगवान भगवद गीता में ये सिद्ध करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि वो भगवान है, ये तीसरा प्रमाण है। और अन्य शास्त्रों में भी जैसे ब्रह्म संहिता और श्रीमद् भागवत में भी ये वर्णन हुआ है। ऐसे चार प्रमाण भगवान यहाँ पर दे। आपको कोई पूछेंगे कौन भगवान है करके, भगवान कृष्ण ही, क्यों वो भगवान कृष्ण भगवान है, तो ये सभी प्रमाण उसको उनको स्थापित करना चाहिए, तब उनका मुंह बंद हो जाता है ना। ठीक है, अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगो प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे गणित एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योग नष्ट करं तप सैरायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही यतरुत्तमम्। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता ही यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार वेद परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताया
बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। आध्यात्मवादियों के तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहां पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का विवरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद्गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतः हम देखते हैं कि भगवद्गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है।
तो हम लोग ये पढ़े थे ना पहले कि किसके लिए पढ़े थे, कौन इसको समझ सकते हैं, किनके लिए भगवद गीता है, वो सिर्फ भक्तों के लिए है, अर्जुन जैसे भक्तों के लिए। और कौन इसको समझ सकते हैं, जो अर्जुन जैसे भक्ति करते हैं वही इसको भगवद गीता को समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए। यदि कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य पांच प्रकार के संबंध हो सकता है। एक, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दो, कोई सक्रिय अवस्था में भगवान सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। तीन, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। चार, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। पांच, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की आवश्यकता में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीव में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका अभी ये भी हम लोग पढ़े थे कि कैसे समझना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आरंभ ही करते हैं ना, किस तरह अर्जुन ने स्वीकार किया उसको हमें ध्यान देना चाहिए करके। ठीक है, इसका वर्णन दशम अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रतम परम सत्य है, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष
अजन्मा तथा महानतम है। नारद असीत देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है और भौतिक कल्पना से अरंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदिदेवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है।
तो भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण को भगवान करके स्वीकार करते हैं। तो जो भी भगवद गीता समझना चाहिए इसको स्वीकार करना चाहिए। आगे जाके प्रॉपर बोलते हैं ना, कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमें भगवान कृष्ण को भगवान करके स्वीकार करना चाहिए।
कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब चाटुकरिता के रूप में कह रहा था, लेकिन
चाटू करिता
क्या बोलते हैं हिंदी में,
लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता अपितु नारद असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्य द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्व एकद्वितम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अतएव भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, नहीं यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता के कथन अनुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है।
तो यहां पर अब तक कितने हुए कि भगवान कृष्ण के सीधे मार्गदर्शन में उसको समझना चाहिए और परंपरा में उसको समझना चाहिए और अर्जुन जैसे भक्त होना चाहिए या और यहां पर भगवान कृष्ण को भगवान करके स्वीकार करना चाहिए, सर्वमेतद् रतम मन्ये, सब कुछ वो जो भी बोल रहे हैं उसको स्वीकार करना चाहिए और ऐसे भक्ति भावना से विनम्र भावना से भक्ति भावना से हमें भगवद गीता समझना चाहिए। ये सब चीज हम लोगों ने चर्चा की है और पढ़ ली भी है। तो और प्रभुपाद अभी भगवद गीता का उद्देश्य वर्णन करेंगे।
तो भगवद गीता है क्या? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हमने से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अन्य अस्तित्व के परिवेश में है। प्रस्तुतः हमें अन्य अस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्य में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परब्रह्म के
तो यहाँ जिज्ञासा तक प्रपद अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा तक प्रपद मनुष्य जीवन का विशेषता के बारे में वर्णन कर रहे। तो थोड़ा उन्होंने पहले उद्देश्य को वर्णन किया, फिर अभी दूसरा पॉइंट विषय उन्होंने शुरू किया। तो मनुष्य जीवन का विशेषता बताकर वो कहते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन में इसके बारे में जिज्ञासा करना चाहिए उन अपने कष्टों के बारे में, वैसे ही जो लोग अपने कष्टों के बारे में जिज्ञासा करते उनके लिए भगवद गीता है। हम लोग वो चर्चा किए थे ना, किसके लिए भगवद गीता है, कौन योग्य है भगवद गीता समझने के लिए, शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए, तो उसको प्रभुपाद यहाँ पर अभी बताते हैं।
मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं और वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोग में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः
for him or for that reason to this end he spoke Bhagavad Gita, to this end he spoke the Bhagavad Gita making his friend Arjuna his student. It is purpose, no, right or not? It doesn't speaks to this end means to such person he spoke Bhagavad Gita means it is for them, or to whom Bhagavad Gita is meant for, or what is the purpose of Bhagavad Gita. Here it appears he spoke purpose of Bhagavad Gita, to this end he spoke the Bhagavad Gita making his friend. It's purpose of Bhagavad Gita, no, right? To this end means, how do you understand English? It's Hindi translation, I think. Yes, you got this statement. In English it is told, to this end Bhagavad Gita was spoken, but Hindi says, you are understanding the difference?
Uddeshya should be
the... It should be purpose, no? Is uddeshya se Bhagavad Gita ko bataya gaya. Vahan par hai se thaise hai? Uske liye, unke liye bataya gaya hai, vyakti ke liye, that means for any person.
Usi ke liye kahi gaya hai, uddeshya.
तो कितना यहाँ पर प्रॉपर कौन समझ सकते हैं किनके लिए भगवद गीता है, क्या क्या बताए यहाँ पर? जिज्ञासु और कुछ है या द सिंसियर स्टूडेंट शुड ऑल्सो हैव फर्म रेस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सच अ स्टूडेंट वॉज अर्जुन तो आदर भाव होना चाहिए तो किन के लिए बता रहा है दो यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे फिर से प्रभुपाद वापस उद्देश्य में आते हैं है ना सो टू दिस एंड ही स्पोक टू एस्टैब्लिश द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ इसके लिए बोलते हैं मनुष्य जीवन को उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भगवद्गीता भगवान ने सुनाया दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लॉर्ड डिसेंड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड ऑल राइट और नॉट भगवान मनुष्य जीवन के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए प्रकट होते इसका अर्थ है कि भगवद्गीता किसके लिए बताया गया था मनुष्य जीवन के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए उसको पूरा करने के लिए भगवद्गीता बताया गया तो दिस पॉइंट वी हैव एडेड मोर डिस्कशन ओके आगे बढ़िए
वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्य पर कृपालु है इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद्गीता का प्रवचन किया भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा
तो भगवद्गीता अर्जुन के लिए जरूरत नहीं था लेकिन हमारे कारण भगवान अर्जुन को अंधकार में डाल देते हैं और ये भगवद्गीता सुनाते हैं
भगवद्गीता की विषय वस्तु में पांच मूल सत्यों का ज्ञान निहित है सर्वप्रथम
बेसिकली हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि भगवद्गीता सबके लिए है मनुष्यों के लिए है विशेष करके हाँ सभी मनुष्यों के लिए है तो वो ये सिद्ध करती है ठीक है और अभी भगवद्गीता के पांच विषयों को प्रभुपाद वर्णन करने वाले और कुछ पूछना है इसके बारे में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ठीक चल रहा है ना बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना गीता के आपको सुनाते जा रहे हो ठीक है तो शाम को आगे बढ़ेंगे हो सके तो खत्म कर देंगे कल पहला अध्याय आरंभ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो इस भूमिका में बहुत कुछ प्रभुपाद जी ने दिया है उसको अच्छी तरह से बार बार पढ़ सकते हैं हाँ ठीक है जो भी भगवद्गीता में है इसमें है भूमिका में आपके लिए भी अच्छा होगा समझने के लिए और प्रचार के लिए भी बहुत अच्छा होगा ठीक है हरे कृष्णा